शंकराचार्य ने उठाया है इतना गहराई से वर्णन किया है कि अन्य धर्म दर्शनों की चर्चाएं, उनका चिंतन जिस लेवल तक पहुंचता है, जिस स्तर तक पहुंचता है, ये जैन दर्शन की बात तो वहां से शुरू होती है। आप समझिए कि अहिंसा की चर्चा करें, जैसे मान लीजिए हम, तो अन्य मतावलंबी जिस अहिंसा की बात करते हैं, वो अहिंसा जिस लेवल की बात करते हैं, जैन दर्शन उससे ऊपर उठ करके अहिंसा की बात करता है। जैन दर्शन ये कहता है आत्मा में राग भाव की उत्पत्ति होना भी हिंसा है। अब किस स्तर की बात होगी, जिसे सारी दुनिया अहिंसा कहती है उसे जैन दर्शन कहता है कि ये भी पार्ट ऑफ हिंसा। गजब हो गया। किसे कहती है सारी दुनिया अहिंसा? सारी दुनिया कहती है दया करो, रक्षा करो, जीवों को बचाओ, जीवों के प्रति करुणा हो। जैन दर्शन ये कहता है ये करुणा का भाव भी हिंसा है, पर की हिंसा नहीं, आत्म हिंसा। आत्म परिणाम हिंसे ने हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसे तत् अनृत वचनादि केवलम उदारतम शिष्य बोधाय अब प्रादुर्भाव है खरुरागादि नाम भवत्य हिंसे थी तेषां एव उत्पत्ति हिंसे थी जिनागम से संक्षेप है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के अंदर चर्चा करते हैं इस तरह की। आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना, कषाय भावों की उत्पत्ति होना, विकार भावों की उत्पत्ति होना, उसी को हिंसा कहते हैं। अरे मिथ्या दृष्टि हिंसक है, बहिरात्मा हिंसक है, हत्यारा है वो, और अपने आप की हिंसा करता है, अपने आप की हत्या करता है। नहीं पहचाना हमने, मार रहे हैं हम अपने आत्मा को, जी नहीं पा रहे हैं, जीने नहीं दे रहे हैं। और वो जो स्वरूप है, वो स्वरूप है बहिरात्मा का स्वरूप। यहाँ दौलतराम जी ने इस तीसरी ढाल में आत्मा की चर्चा करते हुए तीन प्रकार के आत्मा बतलाए थे, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। उनमें मिथ्या दृष्टि जीव बहिरात्मा है। कौन है हम लोग? बहिरात्मा है। अटकने के स्थान कम नहीं है इन बहिरात्माओं के। पांच प्रकार के आश्रम के हेतु बतलाए गए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इन पांच हेतुओं में से सबसे प्रबल वो है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व जिसके जीवन में हावी है, जिसके जीवन में मिथ्यात्व दिखाई देता है, वो जीव है बहिरात्मा। इसके लिए यहाँ क्या पंक्तियां दी थी, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है, देह जीव को एक गिने। कैसी चर्चा कह दी है, शरीर और आत्मा को एक मानने वाला बहिरात्मा है। आपको लगेगा था हम तो नहीं मानते शरीर आत्मा को एक, कैसे नहीं मानते? ये छंद नंबर कौन सा है बतलाऊं क्या आपको? चार नंबर का छंद है। चार नंबर छंद की पहली पंक्ति है, ये मिथ्यात्व से प्रभावित रहते हैं हम, इसलिए मिथ्यात्व का आकर्षण रहता है। मिथ्यात्व का मतलब उल्टी मान्यता, पुण्य में सुख बुद्धि, शुभ भाव में आसक्ति, शरीर के प्रति आसक्ति, जगत के पदार्थों को अपने सुख का कारण समझना, ये सब बहिरात्मापन के लक्षण है। सबसे पहला काम है अपने इस मिथ्यात्व का त्याग करना। सबसे पहले यदि पांच प्रकार के इन आश्रम भावों में से कोई जाता है, किसी का अभाव होता है, तो उसका नाम है मिथ्यात्व। उसके बाद में अविरति जाता है, उसके बाद में प्रमाद जाता है, उसके बाद कषायें जाती है, और उसके बाद योग अर्थात स्थिरता होती है, योग चंचलता मिटती है, जिसकी हम ध्यान की चर्चा करते हैं ना, योग योग की हम चर्चा करते हैं, वो योग सबसे लास्ट में जाने की बात है। अंतिम है वो योग, जहां से लोग शुरू करते हैं। अरे योग से शुरू करना भी बहिरात्मापन का लक्षण है। बोलो, ऐसा कहा है आचार्यों ने? आप कौन से ध्यान की बात करते हैं? दुनिया में बहुत लोग बहुत चलते हैं, ध्यान की पद्धतियां बहुत चलती है, विपश्यना, प्रेक्षा ध्यान, सब बहुत तरह के ध्यान पद्धतियां चलती है। और आज व्यक्ति को ऐसा लगता है ध्यान बहुत श्रेष्ठ है, ध्यान करो, ध्यान करो साहब। अरे लेकिन किसका ध्यान करें पहले वो जानो तो सही, ध्यान किसका करना है? जिस आत्मा का ध्यान कर, अरे क्या जानना है, आप तो ध्यान करो। अरे किसका ध्यान करें? आपको पता है चार प्रकार के ध्यान करें उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्र महाशास्त्र में, आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्थ, रौद्र, धर्म, शुक्ल, यानी ऐसा सूत्र दिया है, हर समय चलता रहता है आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, हमारे ये ध्यान ही तो है और क्या है। विषयों का ध्यान, पंचेंद्रिय विषयों का ध्यान, किसी भी चीज में ध्यान से रहित तो ये जीव होता ही नहीं है। आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान से रहित थोड़ी ना, लेकिन वो पाप रूप ध्यान है। रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है, आर्थ ध्यान तिर्यंच गति का कारण है। ऐसा ध्यान करना है क्या? अरे नहीं नहीं कहीं ध्यान के नाम पे आर्थ रौद्र ध्यान तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। हम किसका ध्यान करते हैं? शरीर शरीर का ध्यान करते हैं। अरे हम आत्मा के ध्यान की बात कर रहे हैं, आप शरीर का ध्यान करते हो। किसका ध्यान करना है मतलब, आत्मा का ध्यान करना है कि शरीर का? शरीर का ध्यान नहीं रखना है, शरीर का ध्यान तो अनादि से रख रहा है, जन्म से रख रहा है। शरीर का ध्यान रखने के लिए जैन दर्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति अपने आप ही शरीर का ध्यान रखता है बिना पढ़े ही। जो जैन दर्शन नहीं पढ़ते हैं वो भी सब शरीर का ध्यान रखते हैं। अरे साहब सुबह उठते पहले मॉर्निंग वॉक पर जाना, एक्सरसाइज करना, ये करना, वो करना, हेल्थ कॉन्शियस सारे आज कितने सब, हर व्यक्ति आपका जो मैक्सिमम इंश्योरेंस जो जाता है वो सब हेल्थ के लिए तो जाता है, और क्या है? स्वस्थ रहें, ठीक रहें, तबीयत खराब नहीं हो, बीमार ना हुए, ये सोचते रहते हैं हम। हमारा ध्यान हमारा उपयोग शरीर की तरफ ही रहता है। और जुगल जी साहब ने पूजन में लिखा है, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। इस चेतन का इस देह की इससे कैसा नाता है? ये देह तो अत्यंत अशुचि है, अत्यंत अपवित्र है, लेकिन दिन रात इसी इसके चक्कर में उलझाए। बताओ 24 घंटे में मैक्सिमम टाइम हमारा किसने जाता है? खाने पीने में, नहाने धोने में, घूमने फिरने में, कमाने में, सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए, माने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, शरीर को संभाल रहे हैं। शायद श्रीमद जी का ही प्रसंग है, किसी ने पूछा उनसे या कि भाई कोई विषयों की और इस तरह की कुछ चर्चा चल रही थी, सुख के बारे में पूछ रहा था, संभालने के बारे में। तो श्रीमद जी ने उससे पूछा कि तुम्हारे एक हाथ में छाछ का बर्तन है और एक हाथ में घी है, दो बर्तन हाथ में है और थोड़ा सा झटका तुम्हारे लग गया, तो तुम दो में से पहले किसको संभालोगे? घी को संभालेंगे। बोले बस समझ लो आप, एक तरफ शरीर है जो छाछ की तरह है और एक तरफ भीतर में आत्मा है जो असली घी की तरह है। तुम शरीर को ज्यादा संभालते हो और आत्मा की तरफ ध्यान नहीं देते हो। यहाँ तो सब समझदार बनते हो और वहां ऐसे मूर्ख क्यों हो? दुनिया में किसी व्यक्ति को मूर्ख कहें तो जचता नहीं है सच में। और अभी यहाँ बैठ करके मैं सबको मूर्ख कहूँ ना तो सब मुस्कुराते हैं क्योंकि ऐसा लगता ही नहीं कि हमें कही जा रही है बात। भाई साहब ये बात तो अंदर लगनी चाहिए, ये बात अपने लिए है। ध्यान की चर्चा की है उमा स्वामी आचार्य ने, अंतर मुहूर्त तक यदि आत्मा का ध्यान करे तो केवल ज्ञान हो जावे। अंतर मुहूर्त तक एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान अंतर मुहूर्तात, उत्तम संग ननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान अंतर मुहूर्तात, ऐसी चर्चा की। मूल सूत्र है उमा स्वामी आचार्य का तत्वार सूत्र का, पढ़ें तो सही पहले हम तत्वार सूत्र में बातें क्या लिखी है और कैसा स्वरूप बतलाया है, उसके बाद में कुछ भी करने के लिए। एक्चुअल में क्रिया प्रवृत्ति में धर्म मानने की बुद्धि इस तरह से बैठी हुई है हमारे दिलो दिमाग में कि हमारे को दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। करने करने में धर्म लगता है, धर्म के नाम पर कुछ तो करें, कुछ तो करें, कुछ धर्म के नाम पर। क्या करना चाहते हो धर्म के नाम पर? कुछ कर नहीं सकता है ये समझ में नहीं आती है, ये अकर्ता भाव समझ में नहीं आता है इसको कि मैं कुछ करता धरता नहीं हूँ। मैंने सुबह भी आज सुबह के प्रवचन में चर्चा की थी मैंने कि इस जीव के पुण्य का उदय तीव्र होता है तो इसके ये बात गले नहीं उतरती, इसके कर्तृत्व की मान्यता पर चोट नहीं पड़ती। पुण्य के उदय में इसका मिथ्यात्व पुष्ट हो जाता है, पुण्य के उदय में हाथ उठाता है तो उठ जाता है और नीचे करता है तो नीचे हो जाता है, तो कहता है मैं कर रहा हूं। और पाप के उदय में जब हिलता नहीं है मैं पहले से काटेगा जाए तो कहता मैं क्या करूं, क्योंकि तू हिलाता है तो हिलाना उसको, यानी मैं नहीं हिला सकता। हम ये कह रहे पहले भी नहीं हिलाता था, मैं करता था कब, मैं करने का विकल्प मात्र करता हूं, पर का करता नहीं हूं मैं, देह का करता नहीं हूं मैं। और मेरी ये मिथ्या मान्यता ये मेरे संसार परिभ्रमण का कारण है, इसे ही बहिरात्मा कहते हैं। कुछ ही नहीं हो रहा है तेरे करने से, जगत के क्रियाकलाप सब स्वतंत्र अपनी योग्यता से हो रहे हैं, तेरी अनुकूल परिस्थितियां भी तेरे उदय के हिसाब से है और प्रतिकूल परिस्थितियां भी कर्म के उदय के हिसाब से है। कर्म का उदय निमित्त मात्र है, उनका परिणमन अपनी योग्यता से स्वतंत्र है और हमारा उसमें कर्तृत्व बिल्कुल नहीं है। समझ में आ जाए बस, ये छोटी सी बात है, इतनी सी बात जिनके समझ में आ जाती है उनके जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है। लेकिन ये मिथ्यात्व इतना हावी रहता है ना, हम प्रभावित रहते हैं, मिथ्यात्व से प्रभावित रहते हैं हम, हावी रहता है हमारे ऊपर, विषय कषाय हावी रहते हैं, जगत जन लौकिक लोग इतने हावी रहते हैं, हम उनसे प्रभावित होते हैं, हम उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते। अपने आप में इतने सॉलिड बनिए कि वे हमसे प्रभावित हो गए, हम उनसे नहीं। थोड़ी सी कुछ परिस्थितियां बनती है और हम ये छोड़ करके उधर चले जाते हैं, उनके साथ में लग जाते हैं। अरे वो हमारे साथ में लगे कि हम उनके साथ में लगे, बोलो। हम स्वाध्याय सत्संग छोड़ करके वो आए हैं तो उनके साथ में लग गए, हम किधर लग रहे हैं? उनके साथ में। ये नहीं हो सकता है कि यदि वो आए हैं तो उनको एक घंटे के लिए हम यहाँ स्वाध्याय में ले आए, सत्संग में ले आए, सत्संग का टाइम है, अब भी चल के देखो मजा आएगा। हम आपसे पूछते हैं, आप कहते हो कि आपकी रुचि बहुत है, दिल पर हाथ रख करके कहना आपको मजा आता है कि नहीं? सच में मजा आता है प्रज्ञेश भाई, अर्पित मजा आता है? तो यदि तुम्हारे को मजा आता है तो तुम्हारे फ्रेंड को मजा आएगा कि नहीं आएगा? वो आकर के बैठेगा तो अपन कहते नहीं नहीं इसके लिए नहीं, ये तो तुम तो यही रहे, है ना? पहले तो अपन भी उसके साथ रुक जाते हैं और कदाचित थोड़ा सा अपना स्तर बढ़े, समझे, तू यहीं रहे हम चलते। अरे हम कहते हैं तुम उसको क्यों नहीं कन्वर्ट करते हो, तुम उसको लेकर के क्यों नहीं आते हो, उसको क्यों नहीं सिखाते हो, उसको क्यों नहीं पढ़ाते हो? जो तत्व ज्ञान की बात हमें अच्छी लगती है वो बात उसको अच्छी क्यों नहीं लगेगी? करके तो देखो, कहीं ऐसा न हो कि हमारे बच्चे आगे चल करके कहें कि पिताजी इतने वर्षों से आप स्वाध्याय करते हो, कभी तो हमको कहते, जब कभी लाइफ में 30 साल बाद में वो सुने और उनको लगे यार ये तो गजब है जैन दर्शन की बात, ये तो जैन दर्शन के सिद्धांत तो गजब सिद्धांत है, क्या रहस्य भरे, क्या निधियां मिल गई है हमारे को, लेकिन मैंने अपनी लाइफ के 30 साल बर्बाद कर दिए, और उसका दोष देगा वो अपने पिताजी को, आपको दोष देगा कि जब आपके पास में निधि मिल गई थी तो पिताजी आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आपने ये चीज खुद ही अकेले सुनते रहे, सुनते तो थे हम, सोचते थे ठीक है रोजाना जाते हैं, लेकिन क्या चीज बताते तो सही, कभी 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 विशेष अवसरों के ऊपर हम ला नहीं सकते उनको, कभी कभी विशेष प्रसंगों पर उनके साथ में हम पिक्चर देखने जाने को तैयार हो जाते हैं, तो विशेष प्रसंगों पर उनको अपने साथ में यहां जिन मंदिर क्यों नहीं ला सकते, ये बताइए, नहीं हो सकता क्या? कभी हम उनके साथ चले जाते हैं तो कभी वो भी तो हमारे साथ में आए, हम उनके साथ में पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं, हम उनके साथ में कहीं घूमने जा रहे हैं, स्विमिंग पूल में नहाने जा रहे हैं, क्रूज पर जा रहे हैं 5 दिन के लिए, तो वो हमारे साथ में 5 दिन के लिए स्वाध्याय में नहीं आ सकते शिविर में? हमने कोशिश ही नहीं की, सही बात तो ये है, हमने अपना माइंड सेट कर लिया कि नहीं नहीं उनके लिए नहीं है। क्यों नहीं है उनके लिए? ये जैन सिद्धांत जीव मात्र के लिए है, हर जीव के लिए है। क्या पता कौन से व्यक्ति को कब कौन से वक्ता की बात जच जाए, लग जाए, कब किसका हृदय जाग जाए, कौन कब बदल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अरे मारी की महावीर जैसों को देखो आप, ऋषभ देव के तमाम शरण में नहीं समझा और जंगल में आकर के और दो मुनिराज और कुछ नहीं और परिस्थिति मांस खा रहा है, मुनिराज सोचते अरे जा जा पहले कुल्ला करके आ, मांस खा रहा है वो शेर जंगल में बैठा हुआ, घूमते लथपथ दिखाई दे रहा है और उपदेश देना चालू कर दिया, कुछ तो देखते हैं उसकी परिस्थिति और कहां उपदेश देने के लिए आ गए। मुनिराज ने ऐसा सोचा होगा नहीं नहीं बिल्कुल संस्कार नहीं है इसमें, ये क्या उपदेश सुनेगा, क्या उपदेश दिया होगा, कैसी कैसी परिस्थिति रही होगी वो, जरा सोचिए आप, मत सोचिए कौन समझेगा और कौन नहीं समझेगा, हमारा दायित्व है सबको बताएं, जो चीज हमें अच्छी लगती है वो चीज चाहे दूसरों को भी अच्छी लगेगी, अच्छा है ना, पहले ये नक्की करो आप अच्छा समझ रहे हो ना इसको, या आपको भी लग रहा है कि ठीक है टाइम पास कर लेते हैं रूम में आते हैं, पहले पहले नक्की करो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। अपने परिवार को वैसा बना लो नहीं तो बहुत मुश्किल होगी, अपनी फैमिली वैसी हो। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊ, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। पढ़िए कभी है? पाठ पढ़ा है कभी? बहुत मार्मिक है, बहुत अच्छी चर्चा है, बहुत सुंदर चर्चा है। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। बीच का छंद बोला है मैंने, बहुत सारे, पूरी चर्चा समाधि मरण जैसी चर्चा, पूरी अंत समय में कैसा हो हमारा, हम किस तरह की भावना बातें हैं, जीवन किस तरह का जिए हम, अंत समय हमारा, अंत भला सो सब भला ऐसा कहते हैं ना, इसका अंत भला मतलब अंत में कोई हमारे कानों में ओंकार मंत्र सुना देवे तो हमारा कल्याण हो जाए। बात तो ठीक है, लेकिन वो अंत समय कब आएगा इस बात का पता नहीं है ना। हमने प्रथमानुयोग में बहुत सारी कथाएं पढ़ रखी है महेंद्र भाई, इतनी कथाएं पढ़ रखी है हमने कि उसने मरणासन्न कुत्ते को ओंकार मंत्र सुनाया तो मर करके कुत्ता देवगति में चला गया, जीवंधर कुमार ने, पद्म रुचि सेठ ने मरणासन्न बैल को ओंकार मंत्र सुनाया तो उसका उद्धार हो गया, पार्श्वनाथ ने जलते हुए नाग नागिन को ओंकार मंत्र सुनाया तो वे मर के धर्णेन्द्र पद्मावती हो गए, ओंकार मंत्र के प्रभाव से वो अंजन को आकाशगामिनी रिद्धि प्राप्त हो गई, अंजन चोर को, कितना शुभम चक्रवर्ती ओंकार मंत्र के अभिनय से नरक में चला, कितने ओंकार मंत्र से जुड़ी हुई कितनी बातें हमने सुन रखी है। हमने सुना है कि अंत में ओंकार मंत्र कान में पड़े तो देव गति मिल जाती है, एक सज्जन मेरे को मिले, पंडित जी ये तो बहुत अच्छी बात है, अपना तो क्या जीवन भर क्या करना है अपने को, अपना अंत भला सो सब भला, अंत में ओंकार मंत्र सुनाने को मिल जाए सुनने को तो अपना तो कल्याण हो जाएगा। मैंने कहा मैं गारंटी देता हूं आपको, आप किस जगह पर रहते हैं ये बतलाइए, इंदौर की बात है। मैंने कहा आप मेरे को 6 घंटे पहले सूचित करना, मैं फ्लाइट पकड़ करके आपको ओंकार मंत्र सुनाने के लिए आ जाऊंगा, लेकिन कब मर रहे हो उसके 6 घंटे पहले सूचित करना। कर सकते हैं बोलो, कब होगी हमारी मौत, कब मृत्यु आएगी अंत समय में? अरे वास्तव में जीवन सुधारने की बात है भाई, मरण नहीं। जो अपना जीवन सुधारते हैं उनका मरण तो अपने आप सुधरता है। मरण कब हो जाएगा, मौत कब आ जाएगी, इसलिए कहा है दिन रात मेरे भगवान मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय में नहीं भूल जाऊं, भावना कब आ रहा है कि दिन रात 24 घंटे वस्तु स्वरूप का विचार करो ना, फिर किस बात की शंका है, रहेगी वही बात। भगवान का स्मरण क्यों नहीं रहेगा, पार्श्वनाथ महावीर स्वामी का स्मरण क्यों नहीं रहेगा, आदिनाथ भगवान चित्त में क्यों नहीं रहेंगे, आत्म तत्व की चर्चा, वस्तु स्वरूप की चर्चा जिनके दिलो दिमाग में रहती है उन लोगों को किसी तरह की कोई शंका नहीं होती फिर कि मौत के समय क्या होगा, परभव में क्या होगा, मर के कहाँ चला जाऊंगा, कहीं नहीं जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे एकाध भाव हैं, होंगे जो हो जाएंगे, हमें तो अल्टीमेट जाना है सिद्ध शिला पर, सिद्धालय में, मुक्ति में जाना है हमारे को, क्या फर्क पड़ता है ये छोटी मोटी जो बातें दिखाई देती है, कोई दम नहीं है इसमें। यहाँ जो बात कर रहे हैं ये बहुत मार्मिक बात इन्होंने यहाँ जो कह दी है बहिरात्मापन के संदर्भ में। बहिरात्मा कौन, हम सब बहिरात्मा, और बहिरात्मा है तो प्रभावित अंतरात्मा से हुए, अंतरात्मा बनना है तो बहिरात्माओं से प्रभावित नहीं हुए, हम बहिरात्मा से प्रभावित है। किससे प्रभावित हो रहे, जिसको जिधर जाना होता है, जिसकी जैसी होनहार होती है वो उससे प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है, समझ लीजिए आप, अपनी होनहार कैसी है, अपना फ्यूचर कैसा है, अपनी दिशा कहाँ है, अपने को भविष्य में कहाँ जाना है, कि अंत समय के परिणामों से इस बात का निर्णय किया जा सकता है कि ये जीव मर के कहाँ जाएगा। बचपन देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जीव कहाँ से आया है, और अंत समय में परिणाम कैसे हैं, जिधर जाने वाला होता है ना परिणाम भी उसी तरह के होते हैं। अंत समय में धार्मिक परिणाम है, धार्मिक रुचि है, उत्साह है, इसका मतलब है कि वो उधर ही जाने वाला है, सही दिशा में जाने वाला है। पाप कर्म का उदय हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, अंत समय में पाप का उदय तीव्र तो बहुतों के ज्ञानियों के जीवन में भी देखा जा सकता है, वो महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन पाप कर्म के उदय में भी पाप का लक्ष्य नहीं है, वो पाप कर्म का उदय उनको प्रभावित करने में समर्थ नहीं है। अरे पाप का उदय क्या प्रभावित करेगा, पुण्य का उदय भी प्रभावित नहीं करता। पुण्य के उदय पर रीझते नहीं है और पाप के उदय में सीझते नहीं है। ज्ञानी जन तो सदा ज्ञान में भीजते हैं, अपने में भीजते हैं, अपने अस्थि की मस्ती में रहते हैं, अपने स्वरूप के प्रति सावधान रहते हैं। अरे जिन्हें चैतन्य का रस एक बार आ गया हो, जिन्हें आत्मा की खुमारी चढ़ गई हो, जिन्हें उस अतिंद्रिय आनंद का रसास्वादन हो गया हो, जिन्होंने सिद्ध समान सुख का आनंद यहाँ इस मनुष्य गति में रहते हुए अभी भोग लिया हो, अब उनके कदम मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। अब उन्हें पंचेंद्रिय के विषय भोग आकर्षित करने वाले नहीं लगते, उन्हें दुनिया के ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उनको आकर्षित नहीं कर सकते। और कितना चमत्कार क्या है पुद्गलों के चमत्कार में, चैतन्य का चमत्कार देखो। इस चैतन्य का ऐसा चमत्कार है जिस चैतन्य की तरफ लक्ष्य करते ही अतिंद्रिय आनंद के फंवारे फूट पड़ते हैं। ये चमत्कार नहीं है क्या? चैतन्य की इस आत्म तत्व की रुचि मात्र से कर्मों की पकड़ ढीली पड़ जाती है, थर थर कांपने लगते हैं कर्म, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, मिथ्यात्म के तीन टुकड़े हो जाते हैं। उस आत्म तत्व का दर्शन होने पर बहिरात्मापन मिट जाता है और अंतरात्मा हो जाता है। अंतरात्माओं के निर्देशन में चलना पड़ेगा। बहिरात्मा बाहर में आत्मपन की कल्पना करने वाला, अंतरात्मा अंदर में जिसने आत्म तत्व को स्वीकार किया है, और परमात्मा उसके बाद में जिसकी आत्मा ने परम अवस्था को, उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त कर लिया है, वो परमात्मा। तरह के तीन तरह के आत्माओं के भेद बतलाए गए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ठीक है, पुण्य कर्म का उदय, उसमें धर्म में लगना बहुत कठिन काम है। पाप कर्म के उदय वाले को धार्मिक बातें समझाना बहुत आसान काम है। पुण्य के उदय में कर्तृत्व की मान्यताएं पुष्ट हो जाती है, कर्तापना पुष्ट होता है, ऐसा लगता है कि मैं ही करने वाला हूँ, मेरी चलती है। पाप कर्म के उदय में समझ में आ जाती है कि मेरी नहीं चल रही है। मैं तो चाहता था ऐसा, तो हो गया ऐसा नहीं। टोडरमल जी ने कहा है कि ये बहिरात्मापन इतना हावी रहता है, ऐसा लगता है इसको जैसे वो कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चलता है ना, मैं चला रहा हूं, बैलगाड़ी के नीचे चलता चलता समझता है इस बैलगाड़ी को मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं, मैं खींच रहा हूं। और बहुत देर तक, आधे एक घंटे तक उसके नीचे चलता चलता कितना चला रहा हूं मैं। अब फिर किसी मोड़ पर आकर के वो बैलगाड़ी घूमती है राइट में और कुत्ता घूमता है लेफ्ट में, समझता है इधर क्यों जा रही है, भौंकता है, भौं 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 करता है। और फिर लेकिन वो तो अपने हिसाब से चल रही थी, फिर दौड़ करके उसके नीचे हो लेता है, चल ठीक है अब इधर चलती है तो इधर ही चल, चलाता तो मैं ही हूं। शरीर जब चल रहा था अपने हिसाब से, एक दवाई खाने की जरूरत नहीं थी, हट्टा कट्टा था, एक्सरसाइज करता था, मेंटेन करके चलता था, कहता है मैं चला रहा हूं, मैं मेंटेन करके चलता हूं, अपने हिसाब से चलता है शरीर, मैं जैसा चाहूं जैसा ढालना चाहूं वैसा ढाल लो अपने शरीर को, मैं अपने हिसाब से चलाता हूं। और फिर जब थोड़े समय बाद में दांत हिलने लगते हैं, हड्डियां जवाब देने लगती है, घुटनों में दर्द उठने लगता है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसा, फिर कुछ समय तक तो सड़फड़ाता है, भागता है इधर उधर, और फिर जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, अब फिर कहते हैं अब ये तो ऐसे ही चलेगा भैया, अब क्या करें अब क्या करें, अब ये तो ऐसे ही होगा। कितने प्रयास नहीं करता है बतलाओ मेरे को, बाल सफेद होने लग जाएं, सर से बाल झड़ने लग जाएं, कितने डॉक्टरों को दिखाता है, कितनी दवाइयां लेता है, कितना तेल लगाता है, कितनी दवाइयां खाता है, और फिर जब सब तरह से थक हार करके परेशान हो जाता है तो फिर कहता है ये तो जाएंगे भैया जानेंगे, अब क्या करें अपने रोकने से रुकेंगे नहीं, अपने बचाने से बचेंगे नहीं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही हो, कितनी तरह से कोई विचार नहीं करता किस चीज से बनी है, कितनी हिंसा से बनी है, कितना पाप लगेगा उसमें, कुछ विचार नहीं है। और हम प्रयासशील हैं उसके लिए, लग रहे हैं ऊपर से पोतरे पॉलिश कर रहे हैं उसके ऊपर से, लेकिन उस पॉलिश से क्या होगा, कितने समय तक टिकेगा वो, आप कितना भी छिपाने का प्रयास करो लेकिन वो तो प्रकट हो जाएगा, उम्र छिपाई नहीं जा सकती है, वो प्रभाव तो दिखाई देगा ना। वृद्धावस्था आखिर कितना छिपाई जा सकती है, छिपा नहीं सकते आप, आपके करने से नहीं होता है। ये चीज समझ में आ जाए, ये चीज गले उतर जाए, और उसके लिए आप दिन भर ऐसा अभ्यास करें, पुण्य के उदय के समय नहीं, जब सर दर्द हो तब विचार करें, अरे यार मैं तो नहीं चाहता था सर दर्द, ये क्यों हो रहा है। जब बच्चे आपका कहना नहीं माने तब आपको विचार आए, कि अरे अरे अपने हिसाब से चलते, मेरे हिसाब से नहीं चलते। जब आंखें जलने लगे, जब कान में दर्द होने लगे, जब पेट दर्द करने लगे, कुछ भी प्रतिकूलता दिखाई देवे, तब आप विचार करें कि ओहो कितना स्वतंत्र है ये सब, मेरी चाहने से नहीं हो रहा है, मेरे करने से नहीं हो रहा है, ये शरीर के ऊपर मेरी बिल्कुल नहीं चलती है। इसलिए ज्ञानी जीव देह के रहते हुए भी वर्ते देहातीत। हम लोग देह में रहते हुए देह तक ही नहीं, देह से बाहर वर्तन करने की सोचते हैं, और ज्ञानी जीव देह में रहते हुए देह से भिन्न वर्तते हैं, इसलिए कौन वंदन करते हैं उनको। ते ज्ञानी ना चरणमा, अनगिनत वंदन करते हैं, बारंबार उनको नमस्कार करते हैं हम। क्यों नमस्कार कर रहे हो? तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। तुम जैसा बनने के लिए तुम्हारी शरण में आया हूं, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। कुछ भी कोई एक काम तो बतलाओ। सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में, ये सच्चाई है। सद्भाग्य के बिना व्यापार में संपदा नहीं मिलती। ये कहता है मैंने इतना कमा लिया, मैंने इतना कमा लिया, ये कमाई कमाई के बारे में कहता है, और फिर घाटा लग गया, मैं क्या करूं, नुकसान हो गया, मैंने इतना नुकसान कर लिया, मैंने थोड़ी ना किया है, नुकसान तो हो गया, तो फिर कमाई वो तो मैंने किया था। दुनिया में ऐसा चलता है, अन्य मती लोगों के यहाँ भजन चलते हैं बहुत, मैंने कहते हैं अच्छा किया सो मैंने किया, बुरा सब करता है भगवान। अच्छाई का यश तो अपने ऊपर लेना चाहता है कि जो जो अच्छा काम हुआ है ये मेरे करने से हुआ है, और जो बुरा बुरा तो मैं थोड़ी ना करता हूं, हड्डी टूट रही तो मैंने थोड़ी ना तोड़ ली है, ये तो भगवान, हे भगवान ऐसा क्यों कर दिया आपने, हड्डी क्यों तोड़ दी। अरे दोनों ही काम तेरे नहीं थे। ये जीव अनादिकाल से आज तक पर कर्तृत्व संबंधी सिर्फ विकल्प करता आया है और कुछ नहीं। जंगल में एक बार एक प्रसंग ऐसा छिड़ गया कि हमारे जंगल के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, कि शेर सिंह का राज चलता है बहुत लंबे समय से, इसकी दादागिरी नहीं चलेगी, इलेक्शन होने चाहिए। हाँ ऐसा नहीं चलेगा तो किसको बनाया जाए साहब? नहीं चुनाव करवा लो, प्रस्ताव पास करो, मीटिंग बुलाओ, सब लोगों को बुलाओ, जो जीतेगा, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो राजा बन जाएगा यहाँ का, उसमें क्या है। ठीक है साहब, मीटिंग बुलाई गई, सब इकट्ठे हुए, सारे जितने जानवर हैं, और सब लोगों के प्रस्ताव आए, कई प्रस्ताव आए, किसने किसका प्रस्ताव दिया, किसने किसका प्रस्ताव दिया, दो तीन प्रस्ताव मुख्य थे, कुछ ने शेर सिंह को भी प्रस्ताव रखा, कुछ कम थे उसके वोट क्योंकि सब डरते थे उससे। ठीक है ना, कुछ हाथी के लिए बोलने लगे, कुछ बंदर के लिए बोलने लगे, कुछ अलग अलग ऑप्शन आए। इसका किसको बनाया जाए? कि नहीं नहीं शेर को राजा बनाना तो ठीक नहीं है क्योंकि इससे तो सब डरते हैं, हाथी भी बहुत ढीला है, थोड़ा सा काम में भागदौड़ होती नहीं है, भारी भरकम शरीर है, बहुत धीरे धीरे चलता है, बंदर काफी एक्टिव दिखता है। तो ये सक्रिय कार्यकर्ता हो, हम सोचते हैं उनको आगे आना चाहिए, जो एक्टिव हो, काम करने में होशियार हो, भागदौड़ कर सके, मेहनत कर सके, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। लोगों को ये तर्क जच गया और सबने मिलकर के बंदर को जंगल का राजा बना दिया, बंदर राजा हो गया, जंगल में राज चलने लगा उसका। कुछ दिन बाद में एक हिरणी दौड़ती हुई आई बंदर के पास में, और बंदर के पास में दौड़ती हुई आकर के बोलती है, हे वानर राज, हे वानर राज, चलो चलो, वो शेर सिंह ने मेरे बच्चे को पकड़ लिया, वो मारकर खा जाएगा, अब आप राजा हैं, आप ही बचा सकते हैं। शेर ने कहा भी चलता हूं, चलो। दौड़ते 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 वहां पहुंचे बंदर और एक पेड़ के ऊपर, और उसने हिरणी ने कहा बचाओ, ये पकड़ रखा है उधर शेर ने मेरे बच्चे को। ये बंदर एक डाल से दूसरे डाल पे कूदने लगा, इधर से उधर की क्या कर रहे हो कि बचाओ उसको, फिर इधर से उधर कूद रहा है, उधर से उधर कूद रहा है, छलांग लगा रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, भाग दौड़ कर रहा है बहुत। उन्होंने कर क्या रहे हो, बचाते क्यों नहीं हो, क्यों ज्यादा बीच बीच में मत बोल, मेरी भाग दौड़ में कुछ कमी हो तो बता, तेरे बच्चे का कुछ भी हो, तेरा बच्चा बचे चाहे नहीं बचे कुछ भी हो, लेकिन मेरी भागदौड़ मेहनत में कुछ कमी हो तो बता। अरे लेकिन महाराज आपकी ये मेहनत क्या करने में समर्थ है, आपकी मेहनत से होगा क्या ये तो बताओ, कुछ नहीं होगा। सच में हमारी जो ये प्रवृत्ति दिखाई देती है, ये सारी की सारी प्रवृत्ति इसी प्रकार की प्रवृत्ति है, सारी भागदौड़ इसी प्रकार की है, सारी मेहनत इसी प्रकार की है, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे शरीर के लिए, ये जितनी पर द्रव्यों से संबंधित अपनी जो प्रवृत्ति दिखाई देती है, ये सब इसी प्रकार की खोटी प्रवृत्ति है। लेकिन आचार्य देव कहते हैं कि तेरे इन सब प्रवृत्तियों और इन सब विकल्पों से होगा क्या? ये विकल्प कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। होता स्वयं जगत परिणाम, नहीं जक्का करता क्या काम। इस स्वाधीनता को अपनाओ और पर का लक्ष्य हटाकर उपयोग अपने में लाओ और अंतरात्मा बन जाओ। इसलिए बहिरात्मापन सदा के लिए छोड़ देने योग्य है और अंतरात्मा होकर के मोक्ष का मार्ग जीवन में प्रकट करने योग्य है। हम सभी इस बहिरात्मापन को छोड़कर अंतरात्मा हो जावे, इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूं।